लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संघर्षों की स्थिति में हम ध्रुवीकरण और लोक लुभावनवाद के खिलाफ संवाद और मैत्री के साहसी निर्माता बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कांस्टेंट लेबन्स एवं छोटे नागपुर मिशन की शुरुआत पर चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने सुना था कि फादर लेबन्स गंभीर रूप से बीमार थे और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए दार्जिलिंग गए हुए थे। वहाँ भी उन्हें अपनी बीमारी से अधिक अपने ख्रिस्तों की चिंता थी। आज हम सुनेंगे कि फादर लेबन्स की अनुपस्थिति में चटर नागपुर की स्थिति बिगड़ गई थी, जिसके कारण उनकी चिंता और बढ़ गई थी। तो आइए आगे सुनते हैं। फादर स्काई पर जो असनसोल और रांची में फादर लेबन से मुलाकात कर चुके थे, इस समय दार्जिलिंग में चैपलिन का काम करते थे। वे फादर लेबन्स की हालत देखकर दंग रह गए। उन्होंने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा, बेचारे फादर, पिछले 4 साल के कठिन प्रेरिती कार्य ने उन्हें तबाह कर दिया है और वे असाध्य रोग के शिकार हो गए हैं। उनकी कमजोर छाती पर 2 लाल मुहासे, झुकी हुई छाती और सूखी खांसी से मुझे लगता है कि वे क्षय रोग से पीड़ित हैं। फादर स्काइपर के अनुमान की पुष्टि दार्जिलिंग के डॉक्टर द्वारा जल्द ही कर ली गई। फादर लेबन्स क्षय रोग से पीड़ित थे, किंतु उनके सामने सच्चाई को छिपाने की कोशिश की गई, पर यह सच्चाई उनसे अधिक दिनों तक छिपाई नहीं जा सकी। 1 महीना बाद जब वे दार्जिलिंग से खांसियों गए, वे जल्द से जल्द ठीक होने के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। वहां रोगियों की देखभाल करने वाले एक ब्रदर ने उन्हें बतलाया कि क्षय रोग से ठीक होने का एक उपाय है छाती जलाना। फादर लेबन्स उपचार के लिए तुरंत तैयार हो गए ताकि वे अपने मिशन स्थान में जल्दी लौट सकें। फादर कार्लेरी जो असनसोल में उनके पहले शिक्षक थे, इस उपचार में उनके साथ थे। वे बतलाते हैं कि वे आग पकड़े और ब्रदर ने कोयले की जलती हुई पेंसिल से फादर लेबन्स की छाती का स्पर्श किया। यह उपचार अत्यंत दर्द भरा था, किंतु फादर लेबन्स के मुंह से आह तक नहीं निकली। इस बीच छोटा नागपुर की एक दुखद खबर ने उन्हें बहुत अधिक चिंतित कर दिया। फादर लेबन्स ने बरवे से एक दुखद खबर सुनी थी। घटना छोटी थी, किंतु उसका परिणाम बहुत दुखद था। जादी के चपरासी को कोर्ट में 20 रुपया जुर्माना भरना था। पैसा नहीं होने और जेल भेजे जाने के डर से वह रांची मिशन केंद्र डेरा से उधार लेना चाहा। फादर लेबन्स की अनुपस्थिति में फादर बोर्डसन डेरा का काम संभाल रहे थे। उन्होंने उससे उधार देने से इनकार कर दिया। फादर बोर्डसन के इनकार करने पर चपरासी ने लुथेरन मिशनरियों से रुपये के लिए आग्रह किया, जिसको उन्होंने मान लिया। इसके बदले चपरासी ने लुथेरन मिशनरियों के गांव आकर उपदेश देने की मांग मान ली थी। इस प्रकार लुथेरन मिशनरी गाँव में आकर खूब प्रचार करने लगे। इसकी खबर रांची तक पहुँची। मिशनरी तुरंत बेंदोरा के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचने पर उनकी मुलाकात नाचते गाते लोगों से नहीं, बल्कि असंतुष्ट चपरासियों के एक बड़े दल से हुई, जो अपने वेतन की मांग कर रहे थे। चपरासियों की नियुक्ति अस्थायी समाधान थी, जिसकी शुरुआत फादर लेबन्स ने बरवे में की थी, क्योंकि वहां पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित प्रचारक नहीं थे। अतः ख्रिस्तों के संपर्क में रहने के लिए उन्हें चपरासियों की मदद लेनी पड़ती थी। मिशन के इन सहायकों का कर्तव्य था रविवार की प्रार्थना सभा के लिए ख्रिस्तों को एकत्रित करना। वे सभी चपरासी अशिक्षित थे, किंतु उनमें से कुछ लोगों को डेरा में निर्देशन मिल चुका था। जितना संभव हो फादर लेबंस ने ऐसे लोगों को चपरासी नियुक्त करने की कोशिश की थी जो गांव में प्रभावशाली व्यक्ति थे। वे चपरासी अपने प्रभाव और पद द्वारा गांव वालों को देव मूर्तियों की पूजा करने से रोकते एवं प्रचारकों के माध्यम से मिशन के साथ जोड़े रखते थे। चपरासियों को उनकी सेवा के लिए कुछ पैसे मिलते थे। इसकी पूरी जानकारी मिशन सुपीरियर फादर ग्रोजा को भी थी। फादर लेबंस ने चपरासियों को बतलाया था कि उनके लिए निर्धारित आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी, क्योंकि वे हर एक महीना वेतन नहीं दे सकते, किंतु काम के आधार पर कुछ रुपये उन्हें दिए जाएंगे। फादर लेबंस के इस तर्क को चपरासियों ने सहर्ष स्वीकार किया था, और जब तक फादर लेबंस रांची में थे किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई थी। फादर लेबंस के रांची से दूर रहने और उनके सहायक द्वारा चपरासी को मदद देने से इनकार करने तथा लुथेरनों द्वारा मदद दिए जाने की खबर पूरे बार्वे में तुरंत फैल गई। स्थिति को समझते हुए फादर बोटसन ने तुरंत कदम उठाया, लेकिन चपरासी ने बदले की भावना के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की और लुथेरनों के पैसे के लिए अपना चंदवा और रोजरी त्याग दिया। फादर कार्टन और फादर डेहोन चपरासियों को चुकाने के लिए अपने साथ 500 रुपए लेकर तुरंत बार्वे गए। रविवार सुबह को बिंदोरा पहुंचकर चपरासियों को पैसे देने के बाद जब उन्हें लगा कि पैसे कम पड़ रहे हैं, तो वे शाम को रांची लौटे और बाकी रकम लेकर सुबह तक फिर बिंदोरा पहुंच गए। इस प्रकार उन्होंने सभी बकाया समाप्त किया। पैसा का सवाल समाप्त हो चुका था। अब दो मिशनरी भी बिंदोरा में एक छोटी झोपड़ी में रहने लगे, पर लुथेरनों के साथ संघर्ष शुरू हो चुका था। श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबंस और चरणनागपुर मिशन की शुरुआत पर एक चर्चा सुन रहे थे, जिस पर हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
लहू से भरा क्रूस पर चढ़ा, सबके गुनाहों की खातिर देखो, लहू से भरा क्रूस पर चढ़ा। सह कर यीशु ने कहा है, जो कोढ़े सह कर यीशु ने कहा है, इन्हें माफ कर दो नादान ये हैं, इन्हें माफ कर दो नादान ये हैं। यीशु का प्यार देखो कैसा अनोखा है, हमारे लिए लहू से भरा क्रूस पर चढ़ा।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक फायदे का गणित, लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओ, प्रत्येक व्यक्ति अपनी करनी के अनुसार अपना संसार बनाता है। ईमानदारी और मेहनत से हर खुशी हासिल की जा सकती है। कुछ लोग आराम और सुकून की जिंदगी हासिल करने के लिए अपनी नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब, ट्यूशन या कोचिंग सेंटर में काम करते हैं। जैसे यदि शिक्षक बच्चों को ज्ञान देकर कुछ धन अर्जित कर लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु यदि अध्यापक ट्यूटर बन जाते हैं और स्कूल की अपनी ड्यूटी को नजरअंदाज करके निजी ट्यूशनों पर ध्यान देते हैं तो वे नैतिक आधार पर गलत कार्य कर रहे हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो उनको चाहिए कि वे स्कूलों में अध्यापन कार्य न करें और ट्यूशन के कार्य में पूर्ण रूपेण रत हो जाएं, ताकि स्कूलों में अन्य अध्यापकों की नियुक्ति की जा सके। दो नावों पर पैर रखना तर्क संगत नहीं होगा। दूसरी बात, जो शिक्षक अपनी ड्यूटी को नजरअंदाज करके रुपये कमाने के लिए निजी ट्यूशनों पर ध्यान देते हैं, खुले आम शिक्षक छात्रों को ट्यूशन पढ़ने के लिए बाध्य करते हैं और पढ़ाने के नाम पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। किसी न किसी रूप में वे खुद पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं, अपने ही बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे शिक्षक समय रहते संभल जाएं, वरना आज के नाटक के शिक्षक के समान उन्हें भी वह दिन देखना न पड़े। आशा है आज का नाटक इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए, प्रस्तुत है माइकल होजेस का लिखा नाटक फायदे का गणित।
अरे तो वही तो कह रहा हूँ कि तनख्वाह लायक ही टाइम पास करता हूँ मैं क्लास में, और क्या।
और वही तो मैं भी पूछ रही हूँ कि जब आपको तनख्वाह पढ़ाने की मिलती है तो फिर आप पढ़ाते क्यों नहीं, टाइम क्यों पास करते हैं आप?
ऐसा मैं अकेला नहीं करता, एक दो और हैं राजा हरिश्चंद्र टाइप के लोग, उनको छोड़कर हमारा सारा स्टाफ यही करता है, समझी तुम?
क्यों, जब तनख्वाह पढ़ाने की मिलती है तो आप लोगों को बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाना भी चाहिए ना।
अरे स्मिता, जब स्कूल में हम ईमानदारी से पढ़ाने लगेंगे तो फिर हमारे घर पर ट्यूशन पढ़ने कौन आएगा?
और जो बाकी मेहनत करने वाले और पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका क्या होगा?
उनका क्या, उनका भी इंतजाम हमारे पास रहता है, हम टेस्ट या फर्स्ट सेकंड एग्जाम में उन्हें फेल कर देते हैं बस, और क्या। फिर माँ बाप खुद ही दौड़ चलाते हैं कि हमारे बच्चे की ट्यूशन ले लो।
और अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को आपके पास ना भेजकर कहीं और ट्यूशन भेजता है तो फिर?
उनका भी वही ट्रीटमेंट है, बच्चे से हमें पता चल ही जाता है कि वो कहीं पर तो ट्यूशन जा ही रहा है, तो उसे अगले टेस्ट या एग्जाम में गुड़का देते हैं, फिर फाइनल एग्जाम तक वो भी हमारे पास आ ही जाता है।
और जो आता ही नहीं है उसका क्या?
देखो स्मिता, हम क्लास के एक एक बच्चे को अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ तक कि उनके परिवार को भी जान लेते हैं। अगर कोई बच्चा गरीब है या ट्यूशन पढ़ने की उसकी औकात नहीं है तो हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। ऐसे बच्चे खुद मेहनत करके पास हो जाए तो हम उन्हें रोकते भी नहीं, लेकिन
ईमानदारी से पढ़ाते क्यों नहीं?
तो तुम क्या समझ रही हो, क्या बाकी लोग बहुत ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं? उनके भी हाल हम जैसों से अलग नहीं है।
दूसरों से हमें क्या लेना देना, हमें तो अपना देखना चाहिए ना। हम भले तो जग भला।
एक हमारे भला बनने से जग भला नहीं बन जाएगा, आजकल उसे ही भला माना जाता है जिसके पास रुपया है। रुपया
क्यों, क्या गरीबों को जीने का कोई अधिकार नहीं है?
क्यों नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन अमीर बन जाने के बाद, अमीर बन जाने के बाद गरीब को भी जीने का हक है।
और जो गरीब अमीर न बन पाए
तो फिर उसकी किस्मत।
ओहो,
किसी ने किसी को रोका है क्या अमीर बनने से? आजकल कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया,
किस काम का ऐसा पैसा।
ये मत कहो, लोग किस तरह से ऐसे ही पैसों से शान और शौकत की जिंदगी जी रहे हैं।
झूठे लोग अपनी झूठी शान में जीते हैं, इसीलिए वे अपनी कमी और दुख को किसी को बताते भी नहीं हैं।
ये शायद तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि पैसे वाले वाकई खुश नजर आते हैं, इसलिए क्योंकि वे जो चाहते, वे जो कामना करते वो पूरी कर लेते हैं, और उस कामना को पूरी करने का माध्यम वो रुपया ही होता है।
ये आपकी गलत फहमी है, रुपयों से केवल चीजें खरीदी जा सकती हैं, रिश्ते, प्यार और खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती।
तभी तो ये पैसे वाले क्या यूं ही खुश नजर आते हैं?
फिर भी मुझे तो आपके इस तरह के कमाए हुए रुपयों की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो अपनी गरीबी और अपने अभाव में किसी भी तरह से सुखी ही रहूंगी।
लगता है तुम्हें भी सच्चाई नाम की बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारी इस सच्चाई को आजकल पिछड़ापन माना जाता है, आज तो जमाना किसी भी तरह से फटाफट पैसा कमाकर अपना जीवन स्तर ऊपर उठाने का है, आगे बढ़ने का है।
ऐसा जीवन स्तर किस काम का जिसमें आत्मिक और मानसिक शांति न हो?
जब पैसा पास में होता है ना, तो आत्मिक शांति और मानसिक शांति दोनों मिल जाती है। यह अभाव ही होता है जो आत्मिक और मानसिक शांति दोनों ही छीन लेता है। और यही नहीं, रिश्तेदारों और समाज दोनों में ही आदमी की इज्जत को भी कम कर देता या खत्म कर देता।
देखिए, कुछ भी हो, ये आपकी समझ है, मुझे तो ऐसा रुपया नहीं चाहिए बस।
और अभी तक ऐसे ही रुपयों से तो तुम्हारा काम चल रहा था फिर?
इसलिए क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि आप बच्चों की ट्यूशन इस तरह से पाते हैं।
इसका मतलब मैंने तुम्हें आज बताकर ही गलती की है। अच्छा होता अगर मैं तुम्हें ये नहीं बताता।
भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। मुझे तो आपकी ईमानदारी भरी कमाई ही काफी है, मेरा काम तो उसी में चल जाएगा।
कमाल है, लोग तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए कितनी तिकड़म करते हैं, और एक तुम हो जो आती लक्ष्मी को ठुकरा रही है।
हाँ, पर एक्स्ट्रा इनकम भी ईमानदारी की होना चाहिए।
मम्मी ठीक ही तो कह रही है पापा, आखिर बच्चों को जबरदस्ती फेल करके ट्यूशन लेना कौन सी नैतिकता है?
तू अभी बच्ची है बेटा, तू इन बातों को अभी नहीं समझेगी।
मैं अब बच्ची नहीं रही पापा, फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ।
रहने दे बेटा, अच्छी बातें तेरे पापा को समझ नहीं आएंगी अब।
एक टीचर होकर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए पापा।
मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये मुझे तुम माँ बेटी से सीखने की जरूरत नहीं है।
मैं कुछ समझी नहीं बेटी।
इसमें समझना क्या है मम्मी, सीधी सी बात है कि सुमित का टीचर भी पापा की तरह होगा और चाहता होगा कि सुमित उसके यहाँ पर ट्यूशन पढ़े, बस और क्या।
समझ गई बेटी, मुझे भी यही लगता था।
शायद रीना ठीक कहती है।
बात बिल्कुल वही है जैसे पापा अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को ट्यूशन आकर पढ़ने के लिए फेल कर देते हैं, ठीक वैसे ही सुमित के टीचर ने भी उसे फेल कर दिया होगा।
इसलिए तो मैं तेरे पापा को समझाती रहती हूँ कि ये अपनी तिकड़म छोड़ दें और बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाएं।
मैं कल ही सुनील के टीचर से मिलूंगा और अगर वो नहीं माना तो प्रिंसिपल से मिलकर उसे बताऊंगा कि आजकल के टीचर ट्यूशन के लिए क्या करते हैं, और ये भी बताऊंगा कि मैं खुद एक टीचर हूँ।
और ये नहीं बताएंगे आप कि ट्यूशन के लिए मैं भी बच्चों की प्रतिभा के साथ ऐसे ही खेलता हूँ?
मुझे और शर्मिंदा मत करो स्मिता, मैंने निश्चय किया है कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा।
वो तो जाहिर है कि अपने साथ बीतने पर अब आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ये आदमी की प्रवृत्ति होती है कि जब तक अपने खुद के साथ कुछ बुरा नहीं हो जाता तब तक वह दूसरे के साथ बुरा करते ही रहता है।
मगर मैंने अब ठान ही लिया है बेटी कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से ही करूंगा।
खुद के नाजायज फायदे का गणित दूसरों को नहीं हमें ही नुकसान पहुंचाता है।
मैंने तो अब खुद के फायदे का गणित करने से ही तौबा कर लिया है।
हर व्यक्ति को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान न करो, वरना खुद भी फायदे में नहीं रहोगे।
तुम बिल्कुल सही कह रही हो स्मिता।
फायदे का गणित। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटक सुना। इस नाटक के कलाकार थे अपर्णा सिंह, प्राची जैन और माइकल होजेस। इंदौर के सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।